نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم مجلس کی مناسبت سے مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کسی حسین سے حسین باغ کو بھی خوبصورت باغ ہو, بہت پھل دیتا ہو, بہترین پھول لگتے ہیں اس میں, یا اگر آپ کاشتکار ہیں کبھی زمین سے واسطہ پڑا ہو, بہت اچھی زمین ہو, پانی بھی اچھا ملتا ہو اور بیج بھی ڈالتے ہیں اس میں اور محنت بھی کرتے ہیں, تو ظاہر خوبصورت باغ ہے, خوبصورت چیزیں دے گا, اچھے پھل دے گا, اچھی زمین اچھی چیز دے گا. لیکن کچھ دنوں کے لیے یا کچھ سال کے لیے زمین کو یا اس باغ پر کوئی انسان توجہ نہ دے اور چھوڑ دے اس کے حال پر, تو کچھ عرصے کے بعد جب جائے گا اس باغ میں تو باغ کی شکل اس کی تبدیل ہوگی. بالکل ظاہر ہے, گھاس پھوس, جانور, پرندے, برا حال ہوگا, لگے گی نہیں کہ یہاں کبھی پھول لگتے تھے, یہاں پھل لگتا تھا. ایسی زمین ہے, بنجر ہو جائے گی زمین, نہ پتہ چلے گا کہ یہاں کاشت ہوتی تھی, یہاں اچھی فصل ہوتی تھی, کیونکہ اس کی کیا نہیں کی, ہم نے نگہداشت نہیں کی, دیکھ بھال نہیں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم میں انسان کو بتایا کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت چیز دی ہے, مرکز ہے انسان کا مرکز, اور وہ ہے انسان کا قلب, دل. اگر خود سوچیں ایک زمین, ایک باغ انسان کیئر نہ کرے تو اس خال بگڑ جاتا ہے. تو جو انسان اپنے دل کی طرف کبھی خیال ہی نہ کرے کہ اس کو توجہ کرے, نہ ہی کرے کہ اس کی حفاظت ہی نہ کرے, اس کی دیکھ بھال ہی نہ کرے, تو اس باغ کا کیا حال ہوگا؟ اس سے حسین باغ کون سا ہو سکتا ہے؟ پہ یہ تو پھل ہی دیتا ہے, لیکن جو دل ہے وہ تو ایسا باغ ہے, وہ تو الحمدللہ ایسی معرفت کے پھل دیتا ہے کہ جس کا خوشبو آسمان تک جاتی ہے. تو اب سوچ لیں خود کہ کتنے ہم نگہداشت کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں اپنے دل کی, تو کیا حال ہوگا دل کا؟ سوچیں کیا حال ہوگا. ستر ستر سال, ساٹھ ساٹھ سال, پچاس پچاس سال. عبادات اپنی جگہ ہے, یاد رکھیں عبادات نگہداشت نہیں ہے. اگر ہم عبادات کرتے ہیں اس میں ہم نگہداشت کر رہے ہیں اپنے دل کی, نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اس کی مثال یہی ہے کہ زمین پہ آپ بیج ڈال لیں, سب کچھ ڈال لیں, لیکن زمین کو آپ دیکھ بھال نہیں کر رہے, حفاظت نہیں کر رہے, تو کیا ہوگا؟ پھل مونڈے ہی ہوگا نا, پھل میں کیڑے ہی لگے گا نا, برے حال ہی ہوگا نا اس کا. تو ایک ایسے دل کی جس کی حفاظت نہ کی جائے, جس کی نگہداشت نہ کی جائے, تو وہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی اچھی طریقے سے, اس کا بھی معاملہ ٹوٹا پھوٹا ہی ہوتا ہے. جیسے پھل نکلتا ہے نا, اس میں کسی میں کیڑا لگا ہے, کسی میں داغ لگا ہوا ہے, کسی میں مزہ ہی کوئی نہیں. صحیح بات کر رہا ہوں. اسی طرح دل کا معاملہ ہے کہ دل کے اندر ہم عبادات کرتے ہیں, یہ نگہداشت نہیں ہوئی, یہ ہم نے اس کو حفاظت نہیں کی, اس کی ہم اس کو توجہ نہیں کی کہ اس میں بھی کیا چیزیں ہیں. تو جس طرح زمین یا باغ حفاظت نہیں کرتا تو جنگلی پودے فضول چیزیں نکل آتی ہیں, اسی طرح جب قلب کی انسان حفاظت نہیں کرتا, اللہ اکبر, پوری پوری زندگی گزر جاتی ہے ہماری, قبروں میں جا رہے ہیں, कबरों में जाने, कभी नहीं सोचा कि दिल के अंदर है क्या हमारे, दिल की हिफाजत कैसी की जाए, इसकी निगराश की क्या जाए, तो क्या होगा उसमें, जैसे जड़ी बूटी उठती थी उसमें क्या शैतान अंदर जाता है, कल्ब के अंदर शैतान का अड्डा बन जाता है, अंडे देता है, बच्चे देता है, वो हमलात होते हैं, कोई कहता है इसको जिन चढ़ गया, कोई कहता है इसको जादू हो गया, कोई कहता है इसको फलां हो गया, कोई कहता है इसको हो गया, एक दुनिया लगी हुई है, अस्पताल भरे हुए हैं, कहता है जहनी मरीज हो गया, गोलियां खाता है, सब कुछ खाता है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने दिल दी है, उस पर तवज्जा करो, वो कहाँ से, सब चीज़ तो अंदर से जाती है इंसान के, कोई बीमारी जो जितनी भी रूहानी बीमारी हम कहते हैं उसका मकस क्या बन जाता है, इंसान का दिल बन जाता है। हम पतनाम ही नहीं पता, बीमारियों को नहीं पता कि कितनी बीमारियाँ दिल के अंदर मौजूद हैं, बस अपने एक तो कोई तवज्जा ही नहीं देता उस पर, या एक ज़ाहरी इबादत पर हम बकंड करते रहते हैं अपने, क्योंकि हम तो इतना कुरान पढ़ लेते हैं, फलां कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन वही बीज डाल रहे हैं आप दिल के अंदर जो फायदा मंद नहीं होगा। एक 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 बीमारी ऐसी है कि जो हमारे जहन में उनका इतनी अहमियत है ही नहीं, ख्याल ही नहीं, तसव्वुर भी नहीं है। जन्नत के अंदर भी अल्लाह ताला ने बाग बनाए हैं, तख्त लगाए हैं, और दोज़ख़ के अंदर भी एक माहौल ऐसा है, बताऊँ आपको कि एक बाग ऐसा है, एक दरख्त ऐसा है, बाग नहीं एक दरख्त ऐसा है कि उसकी टहनियाँ जो हैं वो जमीन के अंदर है, जमीन तक पहुँचती हैं उसकी टहनी, और उसकी टहनी को जो कोई पकड़ लेता है वो डायरेक्ट दोज़ख़ में जाता है। वो क्या चीज़ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में हमें दुआ बताई है, खुद पढ़ते थे, बहुत बड़ा ताउज़ बताया, अल्लाह मन आउज में मिला बुखली, अल्लाह ताला मुझे बुखल से बचाओ, बताए क्योंकि तवज्जा देते इस चीज़ पर, कितनी खतरनाक चीज़ इंसान के दिल के अंदर बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है जिसको हम बुखल कहते हैं, बहुत बड़ी बीमारी है, और जब ये बीमारी निकल जाती है तो फिर क्या आता है, सखावत आती है, खर्च करना आता है, दिल भर जाता है, जैसे जमीन को साफ कर दो तो बेहतरीन फल निकलता है। इसी तरह देखें ये बीमारी, एक एक तो एक बीमारी की बात करूँ जिसका दिल से ताल्लुक है, जिसको हम बहुत मामूली समझते हैं, उसको देखते ही नहीं, हम कभी हमने मुहासबा किया ही नहीं कि हमारे अंदर बुखल है, बुखल है हमारे अंदर, बुखल हर चीज़ में चलता है, माल में बुखल चलता है, इल्म में भी चलता है, तसव्वुर में चलता है, मतलब ये कि अल्लाह पाक ने कोई इंसान को सलाहियत दी हो किसी मामले में और उस सलाहियत को वो दूसरों तक ना पहुंचाए, उसको लोगों को फायदा ना पहुंचाए, जबकि फायदा पहुंचा सकता हो, सबसे बड़ा बुखल है ये, नहीं अब बुखल की राय आप देख रहे हैं कि आप साथ कोई दुकान है, आपकी दुकान है, और उस दुकान वाले को आप फायदा दे सकते हैं लेकिन नहीं दे रहे, एक हमसाया है दूसरा हमसाया है, आप फायदा दे सकते हैं उसको लेकिन आप नहीं दे रहे, मतलब तवज्जो नहीं कर रहे, आप समझते कुछ भी नहीं है, और हम तो मतलब इबादतें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कल मैं बता कितनी बात है, आपने किस हमने किस किसको पकड़ा है, बुखल की टहनी को पकड़ा है, तो बुखल की टहनी जो है डायरेक्ट जहन्नम ले जाने वाली चीज़ है इंसान, क्यों वहां पर क्या कहेंगे, हम तो ये करते रहे तो अल्लाह के नबी फरमाएंगे नहीं कि तुझे कहा नहीं था कि अपने दिल की इबादत कर, कभी आँख बंद करके तुमने कहा था कि जब तू किसी के लिए कोई चीज़ खर्च करने का तेरा दिल करता है, दिल के अंदर कोई कैफियत आती है, कभी किसी को हदिया जब तू देता है तो तेरी क्या पोजिशन होती है, हदिया देने में सबसे बड़ी चीज़ देखते हैं कि यार कोई ज्यादा जायद चीज़ कौन सी हमारे पास, चलो निकाल दो यार उसको, पैक वूक करके दे देंगे, परफ्यूम भी होगा तो वो इस्तेमाल किया हुआ होगा थोड़ा सा, उस पर टिप टिप लगा के दे देंगे, चलो ये हम दे, मैं आपको बिल्कुल साथ ही बातें बता रहा हूँ आपको, चलो यार क्या परफ्यूम दे रहे हैं हम किसी को दे रहे हैं, बुखल है, कितना बड़ा बुखल है मुझे आप बताए, दावत कर रहे हैं किसी, तो दावत करने में इंसान जब दावत कर रहा है समझ ये चाहिए कि बेहतरीन किस्म की दावत के अपनी हैसियत के मुताबिक दे सकता है, हम क्या करते हैं टरखाते हैं, नहीं कुछ नहीं, यानी इतनी ज़बरदस्त बीमारी है ये, और इसका डायरेक्ट कहाँ जाता है इंसान का, और कितने अफसोस की बात होगी मुझे आप बताएं, इतनी इबादत हमने की होंगी, इतना सब कुछ किया होगा, और उसके बाद कहा जाएगा लेट से लेफ्ट हो जाता, कि ये हिसाब नहीं होगा अल्लाह ताला का, कि हमसे नहीं पूछेगा, ये कितनी बड़ी बीमारी है और कितनी बड़ी चीज़ है। अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हदीस को, بخل کے بارے میں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کے پاس ایک ہی دن کا کھانا ہے اور وہ بخیل نہیں ہے, اللہ نے سخاوت دی ہوئی اس کو, اللہ اس نے اپنے دل کو بنایا ہوا ہے, جس کا دل بن جاتا ہے نا وہ پھر یہ بخل نہیں کر سکتا, میں دل بنا ہے اس کے, وہاں جھاڑ پوچھ نکل ہی نہیں سکتی, جو زمین بنی ہوئی ہے روز آ کے مالی دیکھتا ہے, روز دیکھتا ہے, صبح شام وقت ہم محاسبہ کریں اپنے دل کے, خیال کریں کہ مجھ میں کیا بیماری آ رہی ہے, دوسرے سے پوچھیں, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کسی اللہ والے کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھیں تاکہ وہ تھپڑ مار کے بتایا تو کیا حرکت کر رہے ہیں, تھپڑ کھانا سیکھیں, جوتے کھانا سیکھیں, تب کام بنتا ہے. منانا جی کیا بات ہے آپ کی, تو ماشاء اللہ بہت آپ تو جی, تعریفیں کرنے والے تو ہزار لوگ ہوں گے لیکن کوئی بتانے والا نہیں ہوگا بھائی کیا بات ہے, نہیں جی ماشاء اللہ آپ تو نور آئے گئے جی, عمرہ کر کے آ رہے ہیں جی, آپ بڑا ماشاء اللہ کیا جی آپ کے آج آپ کا قرآن, ہر وقت جی آپ تو مسجد میں ہوتے ہیں فلاں ہوتے ہیں, بہت تعریفیں کریں گے, اللہ والوں کے پاس جائیں تو بتائیں گے آپ کہ کدھر جا رہی ہیں تمہاری عبادت, انسان بنا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے دل میں ہے کہ ہم بس ایک روٹین میں چلے جا رہے ہیں خوش ہیں, بھائی جب چنڈا کنڈا کھلے گا نا, جب آئیں گے نا مہمان لینے کے لیے تو اس وقت پتہ چل جائے گا ہم کہاں کھڑے ہیں, صرف ہم نے یہ کرنی ہے, دیکھ بات جو قرآن بتاتے کہ تم کم از کم کچھ یہ بھی نہیں کہ تمہارے وہ بیماری نکل گئی ہے, سائے مشکور اللہ کہتا ہے کہ تم کوشش کرو گے میں اس کو پسند کر لوں گا, کچھ تو کام کیا کہ چلو یہ آدمی کو تلاش کرتے ہیں, کسی شیخ کو تلاش کرتے ہیں کہ اس کے پاس جاتے ہیں, یہ اللہ دیکھیں کتنے کریم اس کی رحمت, دیکھو کتنی زحمت ہی اس کی, تو انسان بخشا جائے گا عمل سے تھوڑے بخشا جائے گا, اللہ کی رحمت بخشا جائے گا. میرے بھائیو ہم کوشش بھی نہیں کرتے, محاسبہ کیا کریں صبح اٹھنے کے بعد کہ مجھ میں کیا کیا بیماری ہیں, اپنا خود عیب نکالیں, شیطان جو اونچا کر کے دکھائے نا, کہتا نہیں نہیں بابا تیری یہ بات نہیں ہے, ہمارے یہاں نقشبندی سلسلے میں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے کم ترین, مگر حضرت چتر سانی کا تو عجیب فکر ہے اس پہ, اور یہ تو صحابہ نے بھی کہا کہ اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر انسان سمجھے اندر حقیقت میں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, صحابہ نے یہ کام کیا, حضرت ابو صدیق اتنی کو پکڑ کے چڑیا کو دیکھ کے رو رہے, حضرت عمر مٹی پہ منہ رگڑ رہے, آج ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں ہم جناب یہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک اٹھ رہے ہیں صبح بالکل ٹھیک ٹھاک کہ ہم نے یہ کام کر لیا, نہیں بہت بہت بڑا وقت آنے والا ہے ہمارے پہ, جہاں ایک ایک چیز ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی, بہت بڑا سخت ترازو ہوگا جس میں تولا جائے گا, یاد رکھیں رائٹ بھی تولا جائے گا لیفٹ بھی تولا جائے گا, جہاں رائٹ والوں کو ترازو بڑھ گئے قرآن بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ بھائی جنت میں چلے جاؤ وزن بڑھ گیا, لیفٹ والوں کو گھڑے گا کہ جاؤ جہنم میں چلے جاؤ, اور جن کے برابر ہو گیا نیکی بھی عرب وہ کہاں جائیں گے اعراف میں چلے جائیں گے, اور پھر وہاں سین چلے گا, وہ اس کو کہے گا یار مروا دیا تم نے, جنت والے خوش ہوں گے الحمدللہ ہم جنت میں پہنچ گئے, کہتے نہیں تم بھائی کہ تم ہمیں سنو اللہ پاک کیا کہتا تھا, اور دوزخ والے دوزخ میں پہنچے ہوں گے, اور بیچ والے جو ہیں انہیں جنت میں اور دوزخ میں, اور دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے کیا کام چل رہا ہے, اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے, سورہ الاحزاب کی آیت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, دعا پڑھ رہے ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں کر دینا ہمیں ادھر نہ بھیجنا, یہ سب تینوں چیزیں بتائیں کس کے لیے, کوئی قوم اور آئے گی یا جو چلے گی ان کے لیے, یہ میرے اور آپ کے لیے بھائی ہو, یہ ہم ہیں, ہم ہوں گے یہ ہم ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے, تو اس وقت کیا سوچیں گے ہم, اس وقت کیا کہیں گے کہ جب ایک نیکی ہماری رہے گی تو وہاں کون آئے گا بچانے والا, صرف ہمارا کام یہ ہے اتنا کہ ہم رائٹ ٹریک پہ کام شروع کر دیں اپنا, بس فنش رائٹ ٹریک پہ کام شروع کر دیں, آدمی ایسا ملے کہ جو ہمارے عیب نکالے, تعریفیں کرنے والا نہیں ہمیں چاہیے, اچھے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تعریفیں نہیں کرتے بلکہ عیب بتاتے ہیں, اگر ہوں تعریف ہی کرتے ہیں, تعریف کے قابل کوئی چیز ہو خود ان سے اپنے عیب پوچھتے ہیں, یہ نہیں کہ بھائی وہ کوئی خود اپنے عیب میں رو رہے ہوتے ہیں بےچارے, ان پہ تو ایک اور اونچی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کوئی ان کے پاس صلاح کے لیے آ گیا, اصلاح اس لیے کرتے ہیں وہ کہ وہ خود نہیں کرتا کوئی اصلاح, بلکہ پیچھے سے حکم آیا ہوتا ہے کہ بھائی تیری ذمہ داری ہے تو جا, پیچھے سے حکم آئے تو بےچارا وہ کیا کرے, وہ کیا کرے, تو کرنا پڑتا ہے وہ کام, تو یہ ہے معاملہ بخل کی, دیکھ لیں اب ہم دیکھیں جھانکی کے معنی بخل ہے یا نہیں ہے, कितना हम सत्कार करते हैं, क्या है प्यारी कह जी सत्कार कितना करें, कितने यानी लुत्फ आता सुन के बाद किसी सखी का। जवाब दिए सत्कार वो करो, खर्च वो करो कि जो तुम्हारे जरूरत से ज्यादा हो, जो तुमने अपनी जरूरत पूरी की, जो ज्यादा हो सारा खर्च कर दो। सुभान अल्लाह, क्या मियार इस्लाम के अंदर देखे, जो जरूरत की रख ली बाकी दे ये खर्चा, और क्या इसका नाम है, ये मियार है हमारे खर्चे का। हम तो जो जमा किए जमा किए जाए फिर भी हमें लगता है ये कम हो रहा है हमारे पास। हम तो अपनों पर भी खर्च नहीं करते, माँ बाप पे खर्च नहीं करते, बहन भाइयों पे खर्च नहीं करते, अपनी औलाद पे भी खर्च नहीं करते, उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। तो मेरे भाई ये है कि बखल जो बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों, बहुत खतरनाक बीमारी है, दिल को बनाए। ये सब बीमारी अंदर मौजूद है, तो कि बीमारी क्या क्या बताएं हम, क्या क्या बीमारी हमारे अंदर है। इस जमीन को बनाएं, निगहदाश्त करें इसकी, कि भाई इसमें घास फूस निकालें, हर वक्त उसको टटोलें कि भाई मुझ में क्या बीमारी है, क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, कैसे उसको ख़त्म करना चाहिए। मोटी मोटी बीमारी नहीं, मैं जना नहीं करता, फला नहीं करता, अलहमदिल्ला वो कैसे कर सकता है। इस हाल में तो वैसे भी दिल भी करता हूँ, अंदर नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया से डर, फलां से डर। असल तो ये है खौफ खुदा कि अंदर जो कोई ना देखता हो बाहर इसके अंदर बीमारी कौन सी है, उस बीमारी की वजह से सारी रात ना सोता, वो है पता चलता है वाकई से खौफ खुदा है। जनाजे तो कौन करेगा, कौन जाएगा, लड़की पीस जाएंगे, 70 जूते मारेंगे लोग आप तो, एक मजबूरी दुनिया की भी रोक लेती है इन गुनाहों से। अगर वाकई गुनाह से बचना चाहते हैं इंसान, वो है कि जिसके अंदर ये चीज़ें ना हो, बखल की वजह से तड़पता हो कि मुझे निकलता क्यों नहीं, वो इंसान कमाल तक पहुँचता है, अल्लाह तक पहुँचता है इंसान, किसी को दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, इसका जहर से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे भाई बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह बखल जो है, अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, किसी मामले में इलम दिया है इलम पर खर्च करता है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मेहनत करता है, चाहो मैं दुनिया को जगाऊँ, अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है कि मैं जिक्र सिखा सकता हूँ, दिन रात उसके तजस्सुस से ही होकर जिक्र सिखाऊंगा। अजीब बात बता रहा हूँ, अल्लाह का वादा है कि एक भी क्या देता हूँ 10। एक मजलिस करता है वो जाके शेख, एक मजलिस करता है उस मजलिस से 10 गुना जन्नत के सवाब लेकर उठते हैं। अल्लाह उन्हें दुनिया दर्जे बनता है, क्यों कि वो भी आराम कर सकता है। अब ये मामला अल्लाह को उसके आगे डंडी कितनी मार रहा है, जोर कितनी लगा रहा है, गाली कितनी खा रहा है, रुकावटें कितनी आ रही हैं, किस कदर हादसात के अंदर ये काम कर रहा है, कितनी मजबूरियों में और मुश्किल में काम कर रहा है, लेकिन अपने काम पे लगा हुआ है। अल्लाह का वादा है एक की जगह 10। अकरम खड़े हो जाए जाके मुकाबला शुरू कर दें, ये कैसे हो सकता है। उसने रिस्क लिए हैं, उसने कोशिशें की हैं, उसने हिम्मतें की हैं। और इस लाइन के अंदर एक अजीब चीज़ है कि कोई चीज़ रुकावट नहीं आती जिसमें उठता है, इलम रुकावट नहीं आता, कोई ऐसी चीज़ रुकावट नहीं आती। अल्लाह सुब्हाना सारे दरवाजे उस पर खोल देता है और उससे बुलवाता है, और ऐसी जगह से बुलवाता है कि वो बोलता है और पब्लिक सुनती है और असर होता है। क्योंकि उठा किसके लिए है, अल्लाह के लिए। अल्लाह ने उसको क्यों उठाया कि मैंने अगर आज ये काम नहीं किया तो कल बखील होऊंगा मैं रोज़े क़यामत में, बुखल के दर्जे मुझे उठाया जाएगा। जो कि आंख बैठ के मराकबा करते रहे, जिक्र करते रहे, नहीं, जब हुक्म होगी काम करो और वो शख्स काम नहीं करता, उससे बड़ा बखील कौन होगा। हमने तो अल्लाह को देखा, गली में जा रहे हो तो इंसान को पकड़ता है, दुकान पे दुकान को पकड़ता है आदमी, उसके कोई मियार नहीं है कि सब खान काम बैठ गया और गद्दी बैठ गए कपड़े करते होंगे लोग, कपड़ा मियार है, लेकिन ये मियार जो है एक कि भाई ना गली देखते हैं, ना कूचा देखते हैं, ना बाजार देखते हैं, ना बस देखते हैं, ना गाड़ी देखते हैं, कुछ नहीं, बस वो ग्राहक देखते हैं, जहां ग्राहक फंसे कब वो कर लो उसको अल्लाह का जिक्र सिखा। ना बीमार देखते हैं, ना अच्छा देखते हैं, ना बुरा देखते हैं, क्यों कि बुखल नहीं करना। दीन वाली जात कौन है, अल्लाह की है, तुम क्यों बुखल करते हो। बुलाओ पब्लिक को, दो समझाओ उनको, बताओ ये चीजें सारी। अल्लाह अकबर, तो भाई 10 गुना अल्लाह पाक बुलंद कर देता है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गए एक दफ़ा, आप हवा वाक़ा लिखते रवायत में, बीमार हो गई, पता ही उनके क्या हालात थे बेचारों के, कितने अमीर थे और कितनी उनके पास चीज़ें थी। तो कह लेंगे अली सख्त बीमारी थी, मैं बीमार हूँ तो मेरा दिल करता है मैं अनार खाऊँ। अल्लाह जो जन्नत की खातून के सरदार हो वो अनार के दानों को तरस रही है जमीन के ऊपर। जिस वक्त विशाल होने लगा ना फातिमा तो जहरा का, हजरत अली को बुलाया, अली बाहर थे रमुल्ला बचो, और बहुत रोती थी फातिमा नबी पाक में विशाल के बाद, बेतहा इतना गिरा करती थी कि मोहल्ले से औरतें आ जाती थी और समझाती थी कि फातिमा तू मर जाएगी इस तरह, संभल जाते थे, मैं मजबूर हूँ क्या करूँ, मैं अपने बाबा के बगैर नहीं रह सकती। इसी हालत में जनाब वो इतने सख्त बीमार होंगे, पहले तो ना ही नहाने के बाद बिस्तर लेट के बिस्तर पर तली कर उन्होंने कहने कैसा कैसी तबीयत है कैसी है फातिमा, ये दूसरा किस्सा वो किस्सा बाद में आऊँगा, इधर मेरे दिमाग चला गया इनकी मैं मन को बता रहा हूँ फातिमा। लोग ही ऐसे हैं कि जब उनकी बात की जाए दिल करता है पहले उनकी कुछ बातें की जाए, किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। तो कहने लगे कि भाई कैसे हैं आप, तुम क्या अली आज क्या पूछते हो, अब तो मैं तैयारी है बस। तो वो रोने लगे, बेनतहा मोहब्बत करते थे फातिमा से, कहने लगे फातिमा जी ऐसे ना बोलो, अभी तो एक हमें गम मिला है इतना बड़ा और उसके साथ ये दूसरा गम भी तो मुझे देके जा रही है, तो मैं क्या करूँगा। तो कहने लगी कि ये तो हो ही गा अली, बस चार तीन चार बातें मैं तुमसे करना चाहती हूँ। पहली थी कि मैं तुमसे बेनतहा प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ अली मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो तुमने एक काम करना है, जिस वक्त मैं दुनिया से चले जाऊँ तो तुमने रोज मेरी कब्र पे आना है ताकि मैं तुमसे मुलाकात करती रहूँ। तो रोने लगे, कहते मैं वादा करता हूँ। कहते दूसरी बात ये है कि हसन हुसैन से बहुत प्यार करती हूँ, इनको हमेशा अपने सीने के साथ रखना, उनको तकलीफ ना होने देना, बहुत ख्याल रखना इनका। कहते मैं करूँगा इंशाल्लाह। अभी कहने लगे अली कि मैं नहा चुकी हूँ, मेरा मुझे गुस्ल देने की जरूरत नहीं होगी, मैं गुस्ल नहीं चाहती, और मेरा जनाजा भी इस तरह उठाया जाए तो किसी को पता ना चले। कहते ठीक। और चौथा फिर हाथ बांध के कहने अली मैं तुझसे इतना प्यार करती हूँ बेइंतहा, मुझे उम्मीद है तू मुझे माफ़ कर देगा कि मैं तेरी मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकी, मैं तेरी खिदमत नहीं कर सकी। सुभान अल्लाह। वो फातिमा कह रही है जिसके जिस्म पे हाथों पे निशान थे अली की खिदमत करते करते, खाने को कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये भी एक खातून थी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेयार है खातून का, किस कदर बुलंद दर्जे की इस्लाम ने अल्लाह ने एक मिसाल दी है औरतों के लिए, हमारी बीवियों के लिए, कि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी तकलीफ में सारी जिंदगी गुजर रही है लेकिन कितनी शुक्र के साथ जा रही है और माफ़ी मांग रही है अपने खामी से कि मैं तेरी खिदमत नहीं कर सकी, जितना तूने मेरा ख्याल रखा मैं तेरी खिदमत नहीं कर सकी। सुभान अल्लाह। भाई ताली दोनों हाथ से बजती है, अगर हम फातिमा जैसे खातून मांगते हैं तो हम अली जैसा करेक्टर भी तो होना चाहिए ना हमारा, यही तो नहीं कि भाई हम बस मांगे तो हम फातिमा जैसी औरत और करेक्टर हमारा हो किसी और किस्म का, तो खुद भी इंसान इस मुकाम पर पहुंचे ना। सुना नहीं आपने कि जो अपनी बीवी को खुश कर देता है अल्लाह ताला सुभाना ताला उसको जन्नत का दरवाजा खोल देता है, बीवी की ख्वाहिश पूरी कर देता है। उसने कह दिया कोई फरमाइश आपसे कर दी तो आपको चाहिए पूरा करें उसको, उसके दिल को खुश करें, नहीं चक्करबाजी। तो ये मिसालें बड़ी देते हैं कि औरतों की, ये हो तू देख फातिमा ने क्या किया और उन्होंने क्या किया। तो कभी अली वाली बात भी देख रहे हैं, फातिमा बीमार हैं तो कहते हैं अली अब मैं बता रहा हूँ किस तरह दिल खुश करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, दिल कर रहा है आज मैं अनार खाऊं मेरी तबीयत बहल जाएगी, अब अली के पास पैसे पाओ करोड़ लवाज कहते जरूर मैं लाऊंगा कहीं से, कुछ भी नहीं पैसा, एक पैर दयाला भी नहीं, कहाँ से अनार लेके आए, बाहर गए, अब उधार मांग रहे हैं लोगों से कि मुझे कुछ उधार एक दिनार कुछ चुके, अब कौन देगा उधार। अब ये देखें एक बीवी के लिए कह देते भी पैसा नहीं है आराम से सो जाए बस पानी पी ठंडा ठीक है, मैंने कौन से कह दिया तुझे खिलाऊं, आज ये होता है ना हमारा, नहीं ऐसा नहीं, ये मैं कह रहा हूँ करेक्टर दोनों चलते हैं। तो वो गया अली करूँ लहज उधार लिया किसी से, लेने के बाद मुश्किल से एक अनार मिला, अनार को लिए आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कैसे लोगों कैसे आजमाते हैं। अभी आ रहे हैं तो रास्ते देखे आदमी करा रहा है बीमारी से, उन्हें क्या बात है अभी क्यों करा रहा है क्या वजह है, कहता है अनार खाने को दिल कर रहा है, कहीं से अनार मिल जाए तो मेरी तबीयत सही हो जाएगी। अच्छा ये तू खा ले फिर, उन्होंने उसको दे दिया। घर की मिसाल आपको दे रहा हूं। अब वो घर है तो कहने फातिमा मैं बहुत शर्मिंदा हूं, अनार तो मैं जैसे तैसे हंसी का दोबारा में उधार मुझे कोई देने नहीं था किसी ने, तो मामला से वो कहने की गली बात यह है कि जिस वक्त वो अनार दे रहा था अल्लाह गवाह है कि मुझे पूरे अनार का मजा आ रहा था, और तू बेफिक्र है, तू क्यों परेशान होता है, मेरा दिल ही भर गया अनार से, तू लाए हुए तो मैं नहीं खा सकती, मुझे पूरा जायका आ गया अनार का, मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ, मैं चाहती थी अपनी तबीयत को बहाल करना, अल्लाह ने मुझे बहाल कर दी मेरी तबीयत। थोड़ी देर के बाद देखा तो कुंडी खड़कती है, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला जिनकी हदीस चल रही है ना इंशाल्लाह, पिछली जुमरात बात हुई थी ना, जुमरात को आया गरीबी गरीब अगली पूरी नहीं हुई इंशाल्लाह सुनने बाकी बात भी, तो वो ना कुंडी खड़े तो देखो उनके हाथ में तश्ती थी और ढका हुआ था, तो ये क्या कहते हैं नबी पाक को किसी ने हदिया दिया है, कहाँ से आया तो नस अल्लाह के मदद से, तो उन्होंने कहा ये मेरा नहीं है फातिमा को दिया, तो मैं हदिया तुम्हारे पास लेके आ रहा हूँ, खोलो क्या चीज़ है, खोला तो उसमें नौ अनार जन्नत के अनार, वो देखते कहते हैं कि कहाँ से लाया हो, नबी के उसने भेजा, किसके लिए भेजा, तुम्हारे लिए भेजा, कदम मेरा है ही नहीं, क्यों कि घी नहीं इसको, वो भी फातिमा थी, नौ कहता अगर जन्नत से आते अल्लाह भेजता तो दस होते, उसका वादा है एक ही जगह दस, कहने हैं दस ही, उन्होंने अपनी बस आस्तीन से एक अनार निकाला, कहते हैं मैंने तो जजमाने के लिए रख लिया था, कहते यकीन कितना है। तो मेरे भाइयों अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करता है किसी चीज में भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कोई सलाहियत आपको दी है, कोई सलाहियत आपको दी है जिस ला दी, और वो अल्लाह की राह में आपकी सलाहियत को इस्तेमाल करते हैं पब्लिक के लिए आदमियों के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको जन्नत के दरवाजे उसको खोल देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है। एक शख्स उतार हदीस जो नबी होता है, एक शख्स जिसके पास खाना है एक दिन का और कोई आ जाता है जरूरतमंद, वो खाना उसको दे देता है, तो अल्लाह सुभान ताला फरिश्तों से कहते हैं कि नार इसकी आवाज़ निकाल दो, फरिश्ते कहते हैं कि क्या जवाब, कहते हैं कि ऐ अल्लाह के वली, यानी आम आदमी है वली बन गया इस खर्च पर, कि ऐ अल्लाह के वली तेरे पिछले सारे माफ कर दिए, तू नए सिरे से अपना अमल को शुरू कर दे। अब देखें कितनी बड़ी बीमारी और कितनी बड़ी रुकावट है हमारे लिए, कितना बड़ा अमल है, बहुत मानते हैं सजदों से चीजें मिलती हैं, मानते हैं तलावतों से चीजें मिलती हैं, मांगते हैं जिक्र अल्लाह से कुरू मिलता है, लेकिन ये जो कुरू मिलता है ना अल्हम्दुलिल्लाह बातनी बीमारियों को खत्म करने के बाद जो दराजात मिलते हैं और जो दराजात बुलंद होते हैं इंसान के, वो तो कमाल ही है ना, फिर अल्लाह ताला किस तरह राजी होता है इंसान। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमारे दिल की दुनिया बदल दे, ये जो हमारी कोशिश है ना, ये अल्लाह वालों जो जिक्र के साथ मोहब्बत रखते हैं, जिक्र की दावतें देते हैं, जिक्र को बुलाते हैं, तो ये लोग बस इस चक्कर में रहते हैं कि हम बस ये वली अल्लाह बनाकर वली अल्लाह बनने के लिए चक्कर में हैं, हम अल्लाह के दोस्त बन जाएं, बस हम अल्लाह के दोस्त बन गए क्योंकि हमने जिक्र शुरू कर दिया, बस फरिश्ते आ रहे हैं और ये हो रहा है और हमारी हर बात वैसी नखरे भी वो चलने शुरू हो जाते हैं, अल्लाह हम तो अल्लाह वाले हैं। ये तो भाई तस्किए की मतलब कि हम अपने अंदर के गुनाहों को ख़त्म कर रहे हैं, उसको मुआसबा करना चाहिए कि गुनाह खत्म हो रहा है नहीं हो। आज मेरी बात आप गौर से सुन लें, इंशाल्लाह आप अपना मुआसबा करें कि हमारे बुखल है या नहीं है, किस दर्जे, और जब बुखल है तो हमने उस शाख को पकड़ा हुआ है, उस शाख हमें कहां लेके जाएगी, अल्लाह से पनाह मांगे इंसान इस चीज की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद मुस्तहिक हैं वो लोग कि जो इस मैसेज को समझते हैं, जिन कहीं से भी सुनो, मेरे से तो आपने पहली दफा सुन लिया, आप तो माशा बड़े बड़े वाज सुनते हैं, मस्जिदों में होते हैं, तकरीरें होती हैं, तालीम होती है, सुनते रहते होंगे ये बात, जिन लोगों ने ये बातें सुन के इस रास्ते को अख्तियार किया लगे हम ये अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को ठीक करें, और बेशक वो ठीक नहीं हो पा रहे लेकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब हैं लोग अल्लाह बार की बात के मुस्तहिक हैं वो औरत मर्द जिन्होंने रास्ता शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया। अब हो या ना हो तो इंसान कमजोर है, माहौल है, लेकिन लगा हुआ तो है ना, ध्यान तो कर रहे कि यार मुझ में ये चीज़ नहीं, वो उसने रास्ता तो पकड़ा है जिक्र का, क्योंकि जिक्र तो इसका जिक्र से इसका गुसल होता है, दिल का गुसल किससे होता है, जिक्र से होता है, तो कम से कम जिक्र की तरफ मेहनत तो कर रहे हैं, अल्लाह के जिक्र पर लगे तो हैं, सुबह कोशिश तो कर रहे हैं कि इस दिल की तरफ गंध ना आने पाए, ये मुहासबी है, हिफाजत ही है ना जिक्र की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी चीज है। जो नहीं कर रहे उनको चाहिए कि जिक्र को पकड़ें और जो जिक्र जिस तरह बताया गया है उसकी उसकी पाबंदी करें। जिक्र जो है बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके दिल को बना, दिल की क्यारियों खिला देता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह जो इसमें मजलिस में लगे हुए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस रास्ते पर चल रहे हैं, अल्लाह के फजल से वो मुफलिहून है, अल्लाह ने उनको कामयाब फरमाई है। इससे कमजोरी ना हो कि भाई अब क्या करें हम, ये नहीं, बिल्कुल ना फिक्र करें। असल चीज़ है कि अल्लाह के हुक्म मुताबिक हम काम कर रहे हैं, उस तरफ चल पड़े हैं। इंशाल्लाह मरने से पहले पहले अल्लाह बिल्कुल साफ कर देगा। अल्लाह बहुत